एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं, बॉनी गार्मस का लेसन्स इन केमिस्ट्री। ये 2022 में आया और आते ही मतलब एक सेंसेशन बन गया।
बिल्कुल, और इसकी लेखिका बॉनी गार्मस खुद विज्ञापन की दुनिया से आती हैं, तो उन्होंने अपने जो अनुभव थे, खासकर लैंगिक भेदभाव के, उन्हें इस कहानी में बहुत खूबसूरती से पिरोया है।
हाँ, और कहानी हमें ले जाती है 1950 और 60 के दशक के अमेरिका में, एक ऐसा दौर
जब महिलाओं की जगह सिर्फ घर में मानी जाती थी। पर यह किताब सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं है, है ना, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
सही कहा। तो आज हम इसी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी असाधारण रसायन शास्त्री की कहानी जो समाज की बनाई सीमाओं को मानने से इंकार कर देती है।
और वो है एलिजाबेथ ज़ॉट, एक कमाल का किरदार। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं, तर्क से जीतती हैं और किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वो एक ऐसी दुनिया में है जो उनकी बुद्धि को नहीं, उनके लिंग को देखती है।
हाँ, उनकी नज़र में या तो कोई चीज़ सही है या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं है, और यही सोच उन्हें बार बार मुश्किल में डालती है।
कहानी की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। हम एलिजाबेथ से तब मिलते हैं जब वो सपर एट सिक्स नाम का एक कुकिंग शो होस्ट कर रही हैं।
सुनने में बड़ा आम सा लगता है ना, एक कुकिंग शो।
बिल्कुल, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल भी आम नहीं है। वो अपनी रसोई को एक प्रयोगशाला की तरह देखती हैं।
हाँ, मतलब वो सिर्फ एक कुकिंग शो नहीं है। जब वो नमक डालने को कहती हैं तो उसे सोडियम क्लोराइड कहती हैं। पानी उनके लिए H2O है।
और वो दर्शकों को खाना पकाने के पीछे का विज्ञान समझाती हैं, जैसे सिरका कैसे मीट के प्रोटीन को तोड़ता है।
तो वो खाना पकाने को एक कला नहीं बल्कि एक विज्ञान की तरह पेश कर रही थी।
यहाँ एक सवाल है, नमक को सोडियम क्लोराइड कहना, क्या ये सिर्फ एक दिखावा नहीं था? मतलब इसका असली मकसद क्या था?
नहीं नहीं, ये दिखावा बिल्कुल नहीं था। देखा जाए तो ये एक राजनीतिक बयान था। उस दौर में ये माना जाता था कि महिलाओं को विज्ञान जैसे मुश्किल विषयों में दिलचस्पी नहीं हो सकती।
अच्छा,
तो एलिजाबेथ इस धारणा को सीधी चुनौती दे रही थी। वो अपनी महिला दर्शकों से कह रही थी, आप ये समझने में पूरी तरह सक्षम है, ये उनकी बुद्धि का सम्मान था।
मतलब उन्होंने रसोई को, जिसे महिलाओं के लिए एक कैदखाना माना जाता था,
हाँ,
उसे ही उनकी आज़ादी और सशक्तिकरण का मंच बना दिया। ये तो कमाल का वैचारिक बदलाव था।
बिल्कुल, वो सिर्फ रेसिपी नहीं बता रही थी, वो महिलाओं को अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनका संदेश लाखों महिलाओं तक पहुंच रहा था।
तो वो एक कामयाब टीवी होस्ट है, लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। ये तो उनके सफर का एक, कह सकते हैं, अप्रत्याशित मोड़ था।
सही।
कहानी हमें बताती है कि वो यहां तक पहुंची कैसे, और ये रास्ता हेस्टिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से होकर गुजरता है।
हाँ, कहानी का एक बड़ा हिस्सा हमें अतीत में ले जाता है। हेस्टिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो उस दौर की किसी भी वैज्ञानिक संस्थान की तरह, मतलब पुरुषों का गढ़ था। वहां एलिजाबेथ को रोज भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके आइडियाज को या तो नजरअंदाज किया जाता था
या
कोई और चुरा लेता था।
हाँ, कोई पुरुष सहकर्मी उसे अपने नाम से छाप देता था। उनके सीनियर डॉक्टर डोनाटी उन्हें वैज्ञानिक कम और एक सुंदर चेहरा ज्यादा समझते थे।
और इसी घुटन भरे माहौल में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है केल्विन इवांस की, एक तरह से एक कैटलिस्ट बनकर।
केल्विन इवांस एक जीनियस, नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित, लेकिन उतना ही अकेला और समाज से कटा हुआ।
और जब उनकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, वे बौद्धिक स्तर पर उनसे बात कर सकता है। वो एलिजाबेथ की सुंदरता पर नहीं, उनके दिमाग पर फिदा हो जाते हैं।
वो पहले इंसान थे जिन्होंने एलिजाबेथ को सच में एक वैज्ञानिक के तौर पर देखा और सम्मान दिया।
बिल्कुल, उनका रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं था, वो विचारों और आत्माओं का मिलन था।
उनके रिश्ते की एक बहुत खूबसूरत बात है उनका एक साथ रोइंग करना, यानी नाव चलाना।
हाँ, जो उनके तालमेल का प्रतीक बन जाता है।
दोनों को एक ही लय में चप्पू चलाना पड़ता है, तभी नाव आगे बढ़ती है।
सही कहा। और वे उस दौर के सामाजिक नियमों को भी तोड़ते हैं। वे शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता किसी सरकारी कागज का मोहताज नहीं है।
और उनके परिवार में एक और सदस्य आता है, 630 नाम का एक कुत्ता।
हाँ, जो उनके परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। उनकी छोटी सी दुनिया विज्ञान, तर्क और सम्मान पर टिकी थी।
लेकिन
विज्ञान का एक नियम एंट्रोपी भी है,
अव्यवस्था।
और उनकी जिंदगी में ये अव्यवस्था एक भयानक तूफान बनकर आती है। केल्विन की एक बहुत ही साधारण सी दुर्घटना में मौत हो जाती है।
हाँ, ये बहुत दुखद था। वो अपने कुत्ते को घुमाते हुए फिसल कर गिर जाते हैं और सिर पर चोट लगने से उनकी जान चली जाती है।
ये इतना अचानक और बेतुका था कि एलिजाबेथ की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है।
और त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती।
नहीं, कैल्विन की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो गर्भवती हैं। अब आप सोचिए, 1950s के दशक में एक अविवाहित गर्भवती महिला।
हेस्टिंग्स इंस्टीट्यूट ने भी उनका साथ नहीं दिया।
बिल्कुल नहीं, मैनेजमेंट कमेटी इसे अनैतिक मानकर उन्हें नौकरी से निकाल देती है। एक झटके में उन्होंने अपना प्यार, अपना करियर, अपनी इज्जत सब कुछ खो दिया।
कहानी यहाँ पर उन्हें एक बेचारी टूटी हुई औरत दिखा सकती थी, पर ऐसा होता नहीं है। क्या चीज थी जो एलिजाबेथ को टूटने नहीं देती?
मेरे ख्याल से उनका वैज्ञानिक दिमाग। उनके लिए हर समस्या एक समीकरण थी जिसे हल करना था। दुख था, बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उनके ऊपर तर्क हावी था।
तो उन्होंने अपने हालात को भी एक प्रयोग की तरह देखा।
हाँ, एक तरह से उन्होंने देखा कि उनके पास क्या क्या वेरिएबल हैं। एक आने वाला बच्चा, कोई नौकरी नहीं, सीमित पैसे, और नतीजा क्या चाहिए? जिंदा रहना और अपनी बेटी को पालना। तो उन्होंने अपनी रसोई को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया।
ये बहुत दिलचस्प है।
हाँ, वो छोटे मोटे कंसल्टिंग के काम करती हैं, अपनी बेटी मैडलिन, जिसे वो मैड बुलाती हैं, को पालती हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है।
वो उसे परियों की कहानियां नहीं सुनाती।
नहीं, वो उसे 3 साल की उम्र में चार्ल्स डिकिंस पढ़ना सिखाती हैं, उसे दुनिया पर सवाल उठाना सिखाती हैं। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, पर उन्होंने अपना आत्मसम्मान कभी नहीं खोया।
और यहीं से कहानी वापस सुपर 8 6 तक पहुंचती है। उनकी जिंदगी में टेलीविजन की एंट्री भी एक संयोग से होती है।
बिल्कुल, उनकी बेटी मैट स्कूल में अपना लंच अपनी दोस्त अमांडा पाइन के साथ बदल लेती है। अमांडा के पिता वॉल्टर पाइन एक टीवी प्रोड्यूसर हैं।
और जब वो अपनी बेटी के टिफिन में वो वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया लंच देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं।
हाँ, और पता लगाते हैं कि इसे बनाया किसने है। और ये खोज उन्हें एलिजाबेथ जॉर्ट तक ले आती है। वॉल्टर उनकी बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें कुकिंग शो का ऑफर दे देते हैं।
एलिजाबेथ पहले तो मजाक उड़ाती है ना।
हाँ, उन्हें बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन पैसों की जरूरत तो नहीं, ये नौकरी करने पे मजबूर कर देती है। पर वो एक शर्त रखती हैं, शो वो अपने तरीके से करेंगे।
पर उनका तरीका काम कर जाता है।
और कैसे, सुपर 8 6 एक सनसनी बन जाता है। वो लैब कोट पहनकर सेट पर आती हैं, अपनी महिला दर्शकों को कभी कम नहीं आंकती और उन्हें प्रेरित करती हैं। और इस तरह ना चाहते हुए भी वो नारीवादी आंदोलन का एक प्रतीक बन जाती हैं।
इस पूरे सफर में वो अकेली नहीं थी, उनके आसपास एक मुंह बोला परिवार बन गया था।
हाँ, क्योंकि जब समाज आपको खारिज कर देता है तो आप अपना खुद का सहारा ढूंढते हैं। इस परिवार में सबसे पहले तो उनकी बेटी मैड है, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है
और अपनी माँ की तरह ही तर्कशील।
बिल्कुल, और वो ही अपने पिता के अतीत के बारे में सुराग खोजना शुरू करती है, जिससे कहानी का एक बड़ा रहस्य खुलता है।
और उनकी पड़ोसन हैरियट स्लोन,
जो शुरुआत में एक पारंपरिक महिला है, पर धीरे धीरे एलिजाबेथ की सबसे बड़ी हिमायती बन जाती है।
फिर वॉल्टर पाइन, वो टीवी प्रोड्यूसर।
हाँ, जो अपने सेक्सिस्ट बॉस के खिलाफ जाकर भी एलिजाबेथ का साथ देते हैं। और हम 6:30 को नहीं भूल सकते।
हाँ, वो कुत्ता। कहानी में उसका नजरिया शामिल करना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। एक लेखक के लिए थोड़ा अजीब फैसला हो सकता था, पर ये काम कर गया। आपको क्या लगता है, क्यों?
ये एक बहुत ही अनोखी साहित्यिक तकनीक है। 6:30 के जरिए हमें उन भावनाओं का पता चलता है जो इंसान जाहिर नहीं कर पाते, जैसे वो कैल्विन को न बचा पाने के गहरे अपराध बोध से जूझता है।
एथ की शोहरत और पुराने राज सब एक साथ आके जुड़ जाते हैं।
हाँ, क्लाइमैक्स तब आता है जब लाइफ मैगजीन में एलिजाबेथ पर एक बहुत ही नेगेटिव आर्टिकल छपता है। उन्हें एक बुरी माँ और समाज के लिए खतरा बताया जाता है।
लेकिन इसका असर उल्टा होता है।
बिल्कुल उल्टा। पूरे देश से महिलाएं उनके समर्थन में खड़ी हो जाती हैं और वो पहले से भी बड़ी हीरोइन बन जाती हैं।
और इसी हंगामे के बीच सबसे बड़ा राज खुलता है।
जी, पता चलता है कि कैल्विन एक अनाथ थे और उनकी पढ़ाई का खर्च एक अनजान दानकर्ता उठा रहा था। मैट की खोज से यह राज खुलता है कि वो दानकर्ता कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली पार्कर फाउंडेशन की मालकिन एवरी पार्कर थी,
जो कैल्विन की असली माँ थी।
हाँ, जिन्होंने मजबूरी में कैल्विन को छोड़ दिया था और पूरी जिंदगी अपराध बोध में दूर से उसकी मदद करती रही।
ये एक बहुत ही भावुक मोड़ है। तो अंत में क्या होता है?
अपराध बोध और अपनी बहू और पोती के लिए प्यार से भरी एवरी पार्कर एलिजाबेथ के रुके हुए शोध को फंड करने का फैसला करती हैं।
तो एलिजाबेथ शो छोड़ देती हैं।
हाँ, अपनी लोकप्रियता के शिखर पर, और वापस विज्ञान की दुनिया में लौटती हैं। लेकिन इस बार एक कर्मचारी बनकर नहीं बल्कि हेस्टिंग्स इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हेड बनकर,
जहां उनकी पूरी टीम सिर्फ महिला वैज्ञानिकों की होती है।
बिल्कुल, उनका सपना आखिरकार पूरा होता है, मगर पूरी तरह उनकी अपनी शर्तों पर।
ये एक जबरदस्त अंत है। तो अगर हम उपन्यास के बड़े विचारों को देखें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है।
सही कहा, ये उस पूरे सिस्टम पर टिप्पणी है जो औरतों की काबिलियत को दबाता है। ये दिखाता है कि भेदभाव सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं है, ये पूरे सिस्टम में उसकी जड़ों में बसा है।
और उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश शायद उसकी सबसे मशहूर लाइन में छिपा है, केमिस्ट्री इज चेंज, रसायन विज्ञान परिवर्तन है।
हाँ, और ये बदलाव सिर्फ लैब में नहीं होता, ये हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में, हमारे सोचने के तरीके में भी होता है। एलिजाबेथ ने यही किया, उन्होंने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया।
उन्होंने विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया।
ये किताब अन्याय पर गुस्सा दिलाती है, किरदारों की जीत पर खुशी देती है, और सबसे बढ़कर पाठकों को यथास्थिति को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तर्क और साहस के साथ अपने सत्य के लिए लड़ी गई लड़ाई हमारे आसपास की दुनिया में अप्रत्याशित और शक्तिशाली रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं।
और ये भी दिखाती है कि एक प्रयोगशाला चार दीवारों तक ही सीमित नहीं होती, ये एक रसोई, एक टेलीविजन स्टूडियो या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां कोई परिवर्तन के साथ प्रयोग करने का साहस करता है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।